अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 15 है। नॉवल डॉक्टर दुआगु, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 15। मेरी दानिश में यही मुनासिब रहेगा, इमरान ने कहा। अब आप इसकी तस्दीक सिविल सर्जन से भी करा सकेंगे। इमरान ने कलम एक जानिब डालते हुए कागज इसकी तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर इसे पढ़ा और तय करके जेब में रखता हुआ बोला, अगर इस दौरान मैं वो ले जाएं तो हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा। यकीनन यकीनन, इमरान सर हिलाकर बोला। इसके जाने के बाद नर्स ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि आप आराम कर सकें। यकीन तो मुझे भी नहीं बेबी, इमरान खुदा कर देखता हुआ बोला। कमरे की फिजा पर खामोशी मुसल्लत हो गई। नर्स सचमुच सलमान का हाथ बटाने किचन में चली गई थी। इमरान सोच रहा था कि इसे किस तरह स्लैब से खिसकाए। उसकी मौजूदगी में इस प्लान को अमली जामा पहनाना करीब करीब नामुमकिन था। जो इसके जहन में था, मामला उलझते जा रहे थे। वो कौन था? वही शख्स जिसने डॉक्टर दुआगु को सराग रसानी पर मजबूर किया था, जिसने डॉक्टर दुआगु पर जोजफ के फर्जी हमले के प्रोपेगेंडा की स्कीम बनाई थी। गालिबन मकसद यही था कि जोजफ जैसे 4 को 54 बॉडीगार्ड की खिदमत इमरान को ख़त्म कर दे, और असल मकसद तो था ही इमरान का कत्ल। वो सोचता रहा और बोर होता रहा। फिर ख्याल आया कि इसके बाप का मुतय्यन कर दे, एक आदमी भी फ्लैट के आसपास ही मौजूद होगा, हो सकता है कि रात को भी निगरानी जारी है। ऐसी सूरत में वो क्या कर सकेगा? थोड़ी देर बाद नर्स फिर कमरे में वापस आई। कुछ कहने ही वाली थी कि इमरान उठ बैठा। उसे घूरता हुआ सख्त लहजे में बोला, मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे दीदों का पानी बिल्कुल ही मरीला? नर्स हक्का बक्का रह गई। जी मैं नहीं समझी, अरे तुम यहाँ अकेले रहोगी तो मर्दूदों के साथ? मेरी ड्यूटी है जनाब, जहन्नुम में गई ड्यूटी, आखिर शराफत भी तो कोई चीज है। चलो भाई बुरका तो उतरवा कर, कोई बात नहीं, लेकिन ये नर्स का पेशा, लाहौर वाला कुवत, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। बातें कर रहा हूँ? अरे खून के आंसू रो रहा हूँ। ये बनी है कौम की बहू बेटियां, ना महरमों की मरम पट्टी करती फिर रही हैं। जमीन नहीं फटती, आसमान नहीं टूट पड़ता। गर्ज ये कि इमरान ने जले तन बूढ़ियों के अंदाज में कुछ ऐसा जहर उगला कि नर्स भी खोपड़ी से बाहर हो गई। फौरन टेलीफोन पर किसी का नंबर डायल करके कहने लगी कि अब वो यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुक सकेगी, ख्वा कुछ हो जाए, ख्वा इस्तफाई क्यों ना देना पड़े। और फिर अपना नेटिंग बैग संभालती खटखट करती चली गई। इमरान अचित लेटा इस तरह छत की तरफ देख रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। क्लॉक ने रात के 12 बजाए और मुंह पर से लिहाफ हटाकर उठ बैठा। सलमान दोपहर कमरे में सो रहा था। अब इमरान ड्रेसिंग अलमारी के सामने नजर आया, लिबास तब्दील कर रहा था। बाएं हाथ में शरीर तकलीफ के बावजूद भी इसने किसी न किसी तरह चमड़े का जैकेट पहना। पतलून की जेब में रिवॉल्वर डालकर आईने पर अलविदाई नजर डालता हुआ बड़बड़ाया, अच्छा किबला वाले साहब, अब देखूंगा कि आपके शिकारी कुत्ते किस तरह बू सूंघते हैं। वो लिबास तब्दील कर चुका था, लेकिन घड़ी पर नजर डालकर फिर कुछ देर तक वहीं खामोश खड़ा रहा। ठीक 12:15 बजे वो इमारत के अकबी जीने के तय करके नीचे जा रहा था, लेकिन अकबी जीना इस्तेमाल करने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो इन्हें महफूज समझता। इसमें दिलचस्पी लेने वाले इतने अहमक नहीं हो सकते थे कि इन्हें नज़रअंदाज कर देते। इसके अंदाजे के मुताबिक निगरानी करने वाले अकबी गली में भी हो सकते थे। निचले जीने पर रुककर वो बाएं जाने वाली दीवार से चिपक गया। गली सुनसान पड़ी थी, नीम रोशन और वीरान। इस वक्त तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। इमरान ने रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली, 12:25 हुए थे। उसी तरह दीवार से चिपका खड़ा रहा। कुछ देर बाद किसी वजनी घड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और एक बड़ा सा ट्रक जीनों के दरवाजे के करीब ही आ रुका। उसका पिछला हिस्सा दरवाजे से सिर्फ 2-2.5 फिट के फासले पर रहा होगा। अगली सीट से 2 आदमी उतरे थे और कोई चीज नीचे उतारी गई थी। और फिर जब दोबारा इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई तो इमरान बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ा। दूसरे ही लम्हे में वो ट्रक के पीछे हिस्से में था। ठंडा गोश्त हाथों में चिपक कर रह गया। गोश्त का ये ट्रक हर रात अगली गली वाली गोश्त की दुकान के लिए गोश्त उतारा करता था। इमरान को इल्म था कि वो रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां पहुंचता है। वो बड़ी सुरू रात थी। ऊपर खुली फिजा और नीचे ठंडे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े थे। इमरान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी सांसें तक मुंजमद होकर रह जाएंगी। ट्रक शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ता रहा। इमरान नहीं जानता था कि वो अब कहाँ रुकेगा। वैसे गोश्त की खासी बड़ी मकदार अब भी ट्रक में मौजूद थी, जिसका मतलब यही हो सकता था कि वो अभी कई दिनों दुकानों पर रहेगा। बहरहाल कुछ देर बाद इसका ख्याल सही निकला। जैसे ही एक पतली सी गली में मुड़ने के लिए रफ्तार हल्की हुई, वो नीचे कूद पड़ा। ट्रक गली में दाखिल होकर एक जगह रुक गया था। इमरान सड़क पर ही खड़ा रहा। जगह से इसने अंदाजा लगा लिया कि दानिश मंजिल यहाँ से तकरीबन 7 मील दूर होगी। फिर अब क्या किया जाए? सड़क सुनसान पड़ी थी। इस वक्त यहाँ टैक्सी मिलना भी महाल था। सर्दी से दांत बजने लगे थे और दांत इसी वक्त बजते हैं जब आसाब काबू में ना हो। जाहिर है ऐसी सूरत में जहन किस तरह कारामद रह सकता है। काफी देर तक इसकी समझ में ना सका कि अब क्या करना चाहिए। इतने में एक चाय वाला नजर आया जो समावार और बर्तनों की चाबी लटकाए गली में दाखिल हो रहा था। शीश ए चाय वाले, इमरान ने इसे आवाज दी। वो मुड़ा और मुर्दा की चाल चलता हुआ करीब आया। गालिबन इसे अब ग्राहक की तवक्का भी थी और वो लहाब के ख्याल में मगन था। एक कप चाय, इमरान ने कहा और उसने समावार जमीन पर रख कर झाजी के कप और सासर निकाला। फिर समावार की टोटनी खोलकर चाय उंडेली और कप इसकी तरफ बढ़ाता वो बोला, तलछट है जनाब, शायद अच्छी ना हो मगर ये सर्दी पता नहीं कहाँ से फट पड़ी है। सिर्फ सर्दी है तो? इमरान ने जुमला पूरा किए बगैर प्यारी संभाल ली। फिर 2 घूंट लेकर बोला, यार यहाँ कहीं आसपास फोन भी होगा। जी क्यों नहीं, बहुत हैं, लेकिन इतनी रात गए शायद ही कोई फोन करने दे, इमरान ने कहा। हो सकता है जनाब, वो एक जाने हाथ उठाकर बोला। उधर खैराती जचा खान, उसका दफ्तर रात भर खुला रहता है। ओ हाँ, अब इमरान को भी याद आया कि यहाँ एक चचा खाना भी है। इसने चाय खत्म की और इसे पैसे देता हुआ बताई हुई सिम चल पड़ा। चचा खाने का दफ्तर खुला हुआ था। फोन करने की भी इजाजत मिल गई थी। क्लर्क से गुफ्तगू करते वक्त भी इसने X2 की फंसी फंसी आवाजें निकाली थी और एक ब्लैक जीरो ने फोन पर भी उसकी आवाजें में गुफ्तगू सुन रहा था। मैं जिस के क्लर्क के सामने अपना नाम लेना पड़े, वो ब्लैक जीरो से कह रहा था, निजामपुर के जचा खाने के सामने वैन भेजो। नहीं, खुद तुम खुद ही ड्राइव करो तो बेहतर है, फौरन तेज रफ्तारी से आओ। रिसीवर रखकर उसने क्लर्क से कहा, अगर मैं यहाँ बैठकर अपनी गाड़ी का इंतजार करूँ तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? जी नहीं, कतई नहीं, क्लर्क ने कहा। शुक्रिया, इमरान ने बैठते हुए जेब से चिंगम का पैकेट निकाला और उसे भी पेश किया, जो जबरदस्ती की हंसी के साथ कबूल कर लिया गया। तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ब्लैक जीरो छोटी सी सिया रंग की वैन लाया था। इमरान ने एक बार फिर क्लर्क का शुक्रिया अदा किया और वैन में जा बैठा और वो हरकत में आ गई। आपकी जख्म का क्या हाल है? ब्लैक जीरो ने पूछा। आज ही दोबारा ऑपरेशन हुआ है और आप इस तरह? उन्हें यहाँ क्या फर्क पड़ता है? इमरान ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इस जाली लेफ्टिनेंट ने क्या बताया? वो तो कुछ बोलता ही नहीं, गूंगा हो गया है। गधे हो तुम लोग, अगर आपने हुक्म दिया होता तो। तशद्दुद भी करते, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। ब्लैक जीरो कुछ ना बोला। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर इसने कहा, सज्जा ने इतला दी थी कि कई मुश्तबा आदमी आपके फ्लैट के आसपास देखे गए हैं। उसका ख्याल है कि निगरानी करने वाले बाकायदा तौर पर ड्यूटियां बदल रहे हैं। मुझे इल्म है। कौन है वो? क्या नींद में हो? क्यों? बिल्कुल किसी बच्चे के से अंदाज में पूछा तुमने, कौन है वो? अरे इनके अलावा और कौन होंगे जो मुझ पर कई बार हमला कर चुके हैं? और फिर एक हाथ किबला वाले साहब का मुतय्यन करदा भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि दूसरे ऑपरेशन के बाद मैं सिर्फ आराम करूं। मेरी दानिश में भी इनका ख्याल दुरुस्त है। शायद तुम बात के साय से महरूम हो चुके हो। जी हाँ, यही बात, इसने कहा और हंस पड़ा। इसीलिए हंस भी रहे हो? कुछ देर तक फिर खामोशी रही। वैन तेजी से शहर की जानिब जा रही थी। सड़कें सुनसान पड़ी थी, कभी कभी एक आध ट्रक करीब से गुजर जाता था। मैंने जोलिया को फोन पर फरमाइश की, ब्लैक जीरो ने कहा, लेकिन वो रद रही। हिचकियां साफ सुनी थी मैंने। वो पूछ रही थी कि क्या वो अपना पन भी फरोख कर चुकी है इस महकमे के हाथ। मैंने कहा, यही बात है अरे जनाब, वो तो इस्तीफा देने पर आमादा थी। मैंने कहा कि उस सूरत में से गोली मार दी जाएगी। इमरान कुछ ना बोला। कुछ देर बाद वैन दानिश मंजिल के कंपाउंड में दाखिल हुआ। चारों तरफ की हुक्मरानी थी। अरे तुम जा सकते हो, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा। तो साउंड प्रूफ कमरे में बंद है। अंदर और कौन है? कोई भी नहीं। ठीक है, अब जाओ। मेरा ख्याल है कि मुझे ठहरना चाहिए, आपका बाजू भी जख्मी है। शुक्रिया सर। ठीक है, इमरान ने खुश लहजे में कहा, फिर बोला, इसे खाना दिया गया या नहीं? नहीं। क्यों? शायद इसी तरह उगल दे। गधे हो तुम, इसने झुल्लाए हुए लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। इमारत में दाखिल होकर उसने रोशनी की और एक ऐसा कमरे में आया जहां मेकअप का सामान रहता था। कुछ देर बाद वह एक सेहतमंद बूढ़े की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मुझे इतनी घनी थी कि अदाना छुप गया था। आंखों पर ऐसी ऐनक लगाई गई जिससे आंखों की साख देखने वाले की समझ में ना आ सके। फिर वो किचन में आया। यहाँ डब्बों में पैकेट खाने की चीजें मौजूद थी। बिजली का चूल्हा खोल कर दो, एक अंडा फ्राई किए, कुछ रोटी के कुछ दोस्त फेंके और सब कुछ ट्रॉली पर रख कर साउंड प्रूफ कमरे की तरफ रवाना हो गया। ट्रॉली बाहर ही रहने दी और खुद दरवाजा खोलकर बाइस्ती के अंदर दाखिल हुआ। कैदी सामने वाले सोफे पर पैर सकोड़े पड़ा ओंग रहा था। इमरान फिर वापस आया और ट्रॉली भी अंदर धकेल लिया गया। इस बार इस तरह दरवाजा बंद किया कि उसके अलावा और कोई ना खोल सके। अब वो बुलंद आवाज में खकारा और कैदी उछल पड़ा। कुछ खा लीजिए जनाब, इमरान ने बड़े अदब से कहा। कैदी कुछ ना बोला, सिर से घूरता रहा। फिलहाल जो कुछ हाजिर है खाइए, सुबह जो कुछ आप फरमाएंगे खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। कैदी इसे घूरता रहा। इसकी आंखों से बेयकीनी मुतरशा थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये बताओ इसके लिए गैर मुतवक्का रहा हो। फिर इमरान ट्रॉली इसके करीब लेता चला गया। खुद ही अंडे के सैंडविच बनाए और सार्डिन के टीन खोलकर एक बड़ी सी प्लेट में खाली कर दिए। खाइए ना, इमरान ने नरम लहजे में कहा। तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो, कैदी ने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान कुछ ना बोला। जब इसने खाना शुरू कर दिया तो वो बोला, मुझे बेहद अफसोस है कि इस वक्त आपके लिए नरम रोटी ना मुहैया कर सकूंगा। कोई बात नहीं, कैदी ने कहा और सार्डिन पर टूट पड़ा। इमरान इसे तफक्कुर आमेज नजरों से देखता रहा। कुछ देर बाद कैदी ने सर उठाकर कहा, मिलिट्री में तुम जैसे शरीफ आदमी कहाँ होते हैं? मिलिट्री? इमरान ने हैरत से दोहराया। क्यों, क्या तुम्हारा ताल्लुक मिलिट्री से नहीं है? जी नहीं, कतई नहीं। ये तो कुछ बदमाश किस्म के लोग मालूम होते हैं। कौन लोग, कैदी ने पूछा। वही लोग जिन्होंने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर रखा है, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। मैं भी कैदी हूँ, यहाँ कैद किए जाने वालों की देखभाल करता हूँ। क्या निकल भागने की कोई सूरत नहीं? आप सिर्फ कंपाउंड में निकल सकते हैं। कंपाउंड से बाहर कदम रखा और किसी जानिब से एक गोली आई और खोपड़ी में सुराख हो गया। ये कैसे मालूम हुआ तुम्हें? वही लोग कहते हैं, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। कहते हैं कभी कंपाउंड से बाहर कदम निकाल कर देखो, मगर तुम्हें पकड़ा क्यों था? साहब अच्छा भला सड़क पर चला जा रहा था, दो आदमियों ने आ पकड़ा। एक ने कहा कि तुम मेरी जेब काट कर भागे हो, दूसरे ने मेरी जेब में हाथ डालकर एक पर्स निकाला जो मेरा नहीं था। फिर जबरदस्ती घसीटते हुए बोले, चलो थाने, और थाने के बजाय यहाँ फंसा लाया। मेरे बच्चे न जाने क्या सोचते होंगे। इमरान खामोश होकर सिसकियां लेने लगा। ओहो, चुप रहो चुप रहो, कैदी ने इसे दिलासा दिया। कब तक चुप रहूं, कहाँ तक चुप रहूं? वाकई तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है। इस वक्त इस इमारत में कितने आदमी हैं? कोई भी नहीं। कमाल है, कैदी ने हैरत से कहा, और इसके बावजूद भी तुम खुद को कैदी समझते हो? मजबूर हूँ। अगर कंपाउंड के बाहर किसी अनदेखी राइफल की गोली। छोड़ो, कैदी हाथ हिलाकर बोला। तजुर्बा किए बगैर तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा हो ही जाता है? तजुर्बे की हिम्मत नहीं रखता जनाब। वो लोग ऐसे ही मालूम होते हैं कि जो कुछ कहेंगे कर गुजरेंगे। तुम बाहर जाना चाहते हो? क्यों नहीं, मेरे बाल बच्चे, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। मैं तैयार हूं जनाब, यहाँ कोई गाड़ी भी होगी। तीन तीन गाड़ियां हैं गैराज में और उनकी संख्या भी भरी होंगी, मगर इंजन तो मुगजिल होंगे। कैदी बड़बड़ाया। ओ परवाह नहीं, मैं इंजन को गैर मुगजिल कर सकूंगा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयारी कैसी जनाब? क्या मैंने कोई दौलत इकट्ठी कर रखी है? बस यूं ही निकला चलूंगा, लेकिन गोली। चलो तो मुझे बाहर ले चलो, अजनबी खाना छोड़कर उड़ गया। फिर साहब, फिर सोच लीजिए। बड़े बुजदिल हो बड़े मियाँ, इतनी उम्र गुजार चुकने के बावजूद भी जिंदगी से इतना प्यार याद रखो। सिर्फ वही लोग इस तरह मार लिए जाते हैं जो मौत से डरते हैं। मैं मेरे खुदा, मैं क्या करूं, इमरान ने भराई हुई आवाज में कहा। चलो, कैदी इसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला। हुसाम क्रू कमरे से बाहर आए। साहब फिर सोच लिए, इमरान गिड़गिड़ाया। अच्छा, तुम मुझे सिर्फ गैराज तक ले चलो, फिर बाहिफाजत बाहर निकाल ले जाना, मेरा काम होगा, तुम कतई बेफिक्र रहो। वो दोनों गैराज की तरफ चल पड़े। कंपाउंड अब भी सुनसान पड़ी थी और अंधेरा पहले से भी गहरा हो गया था क्योंकि मतलब अबर आलूद था। फिर वो दोनों बड़ी आहिस्तगी से गैराज की तरफ बढ़ते रहे। गैराज के सामने पहुंचकर इमरान ने धीरे से कहा, गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकालना मुनासिब ना होगा। तुम गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किए बगैर इसे रिवर्स गियर में डालो, मैं आगे से धक्का लगाता हूँ। इस तरह गाड़ी गैराज से बाहर आई, इंजन मुगजिल नहीं था, वैसे चाबी लगी हुई मिली थी। इमरान ही की तजवीज पर इसे इस तरह फाटक तक लाया गया। इंजन स्टार्ट किए बगैर फाटक के करीब पहुंचकर इसका रुख सड़क की जानिब कर दिया गया। अब इतनी तेजी से निकाली ले चलो कि इमरान जुमला पूरा ना कर सका। बुरी तरह कांप रहा था, बस तुम चुपचाप बैठे रहो, कैदी आहिस्ता से बोला। बहुत खौफजदा मालूम होते हो, दो दम निकला जा रहा है मम मेरा तो, इमरान कांपता हुआ बोला। फिर इंजन स्टार्ट हुआ और कार फराटे भरती हुई फाटक से बाहर निकल गई। सामने सुनसान सड़क फैली हुई थी, कैदी ही कार ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर निकल आने के बाद इसने कहका लगाया, तुम तो डर के मारे मरे जा रहे हो, इसने कहा। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, देखो पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। इमरान ने मुड़कर देखा और कपकपाती हुई आवाज में बोला, नहीं कोई गाड़ी नहीं है। यार तुम खामखा इतने दिनों तक वहां कैद रहे, कैदी ने हंस कर कहा। मैं कि क्या बताऊं जनाब, इमरान हकला कर रह गया। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर इमरान ही बोला, अब हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? फिक्र ना करो मैम, मेरे घर चलिए। नहीं, पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, जैसी मर्जी जनाब की, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। वो महसूस कर रहा था कि कार शहर आबादी को काफी पीछे छोड़ चुकी है। किसी नामालूम मंजिल की राह खामोशी से तय होती रही। इमरान खुद भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। आखिरकार गाड़ी एक जगह रुक गई। इमरान ने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे के सिवा और कुछ ना दिखाई दिया। आओ, कैदी दरवाजा खोलकर नीचे उतरता हुआ बोला, थोड़ी देर आराम कर लें। ओ, तो सफर लंबा भी हो सकता है, इमरान ने सोचा। वो भी नीचे उतर आया। कैदी कह रहा था इस गाड़ी में सफर करना मुनासिब ना होगा। क्यों? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, अकल के नाखून लो बड़े मियाँ, अगर फिलहाल हम बचकर निकल आए हैं तो तुम ये समझते हो कि बचे ही रहेंगे। इमरान कुछ ना बोला। कैरी इसका दायना बाजू पकड़े इसे आगे बढ़ा रहा था। वो एक वीराने ही में रुके थे और ये रास्ता जिस पर चल रहे थे ना हमवार भी था और इसके दोनों जाने झाड़ियों के सिलसिले थे। नीचे देखकर चलना, कैदी इसे कह रहा था, वरना हाथ पैर तोड़ बैठोगे। मैं मोहतात हूँ, इमरान ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक चलते रहने के बाद वो एक झोपड़े के सामने रुके। अंदर रोशनी थी। कैदी ने किसी का नाम लेकर पुकारा। दरवाजे पर से चिटे हटिया गई है और कोई सामने आया। रोशनी इसके पुश पर थी, इसलिए चेहरा दिखाई ना दिया। कौन है? इसने गुर्राई हुई सी आवाज में पूछा। 633, कैदी ने जवाब दिया। दफ्तर कैदी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और कहा गया, ठीक है, दूसरा कौन है? इत्मीनान से बताऊंगा, कैदी ने कहा। आओ, दूसरा आदमी रास्ता छोड़कर एक तरफ हटा और बोला। वो दोनों झोपड़े में दाखिल हुए और इमरान ने अंदाजा कर लिया कि वहां महकमा जंगलात का कोई रखवाला रहता है। कुछ इसी किस्म का सामान वहां नजर आया था। झोपड़े का मकीन सूरत से अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। पेशानी पर जख्मों के निशानात थे। जिस्म की बनावट बता रही थी कि कड़ी मेहनत का आदी है। आंखों से सख्तगिरी भी आया थी। कैदी को मुसलसल घूरे जा रहा था। कैदी ने जल्दी जल्दी अपनी दास्तान दोहराई और कुछ इश्तबाह नजरों से इमरान की तरफ देखा। चंद लम्हे घूरता रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे इस इमारत तक पहुंचा सकोगे? मैं नहीं जनाब, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। ना तो वहां तक जाते वक्त मेरे होश बजाते और ना वहां से रिहाई के वक्त। तुम वो कैदी की तरफ मुड़ा, मेरा ख्याल है अब शायद मैं भी वहां तक ना पहुंच सकूं। अच्छा, उसने तवील सांस ली और बोला, मैं खुद इस सिलसिले में कुछ ना कर सकूंगा। हाँ, तुमने वो गाड़ी कहाँ छोड़ी है? सड़क पर, मैं इसे देखना चाहता हूँ। कैदी इमरान की तरफ देखकर बोला, चलो मुझ पर रहम करो। इमरान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझ में अब चलने की सिख नहीं रह गई। झोपड़ी के मकीन ने उसे तेज नजरों से घूरा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कैदी ने इमरान से कहा, अच्छा तुम यही इंतजार करो। वो चले गए और इमरान इनके कदमों की दूर होती हुई चापे सुनता रहा। तेज नजरों से झोपड़े का जायजा भी ले रहा था। उसे इत्मीनान था कि कार के नंबर से वो कुछ भी मालूम ना कर सकेंगे, क्योंकि दानिश मंजिल से ताल्लुक रखने वाली सारी गाड़ियों के नंबर जाली थे और इनका इंदराज कहीं भी नहीं था। होना तो यही चाहिए था कि मौके से फायदा उठाकर इमरान झोपड़े की तलाशी ही ले ले। डालता लेकिन इसने इसे मुनासिब ना समझा। इसने सोचा मुमकिन है आस पास कोई और भी मौजूद हो। वो जहां था वहीं खड़ा रहा, बैठा भी नहीं। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ गए। शायद तेज चले थे क्योंकि दोनों ही हाँफ रहे थे। ओहो, तुम अब तक खड़े हो, कैदी ने इमरान से कहा। हमें रात यहीं बसर करनी पड़ेगी, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम कहाँ रहते हो, दूसरे आदमी ने पूछा। इमरान ने आदमपुर की किसी गैर मुअरफत इमारत का नाम बताया, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि मुखातिब अब भी इसे शुबा ही की नजर से देख रहा है। प्यार के बिस्तर पर वो लेट गया। कुछ देर बाद अजनबी ने चिराग भी बुझा दिया। इमरान दम साधे पड़ा रहा। कुछ देर बाद खराटे भी लेने लगा, लेकिन इसके हवास कम सा पूरी तरह बेदार थे। कैदी ने इसे मुखातिब करके पूछा भी था कि क्या वो सो गया, लेकिन इमरान के खराटे बसतूर जारी रहे। फिर कुछ ही देर बाद इसने दोनों की खुसर खुसर सुनी, लेकिन बातें समझ में ना आ सकी। वो कान उधर ही लगाए रहा। अब वो सिर्फ एक ही और वादे किस्म की आवाज सुन रहा था, जो झोपड़ी के मकीन ही की हो सकती थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम नशर किया जा रहा हो, लेकिन जो कुछ भी कहा जा रहा था मखसूस किस्म के कोड वर्ड्स में कहा जा रहा था, इसलिए मफहूम समझ में ना आ सका। इमरान खुद को किसी नए वकूल के लिए तैयार करने लगा। ओवर एंड ऑल कहकर वो आदमी खामोश हो गया और दोनों में फिर सरगोशियां होने लगी। इमरान ने पतलून की जेब में पड़ा हुआ रिवॉल्वर टटोला और फिर इस तरह बड़बड़ाने लगा जैसे बाज लोग सोते में बड़बड़ाते हैं। कैदी ने उसे आवाज दी और जवाब ना पाकर हंसने लगा। बड़बड़ाता है, दूसरे आदमी ने कहा। इमरान के खराटे फिर शुरू हो गए थे। हैरत है, कुछ देर बाद उसी आदमी ने कहा, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, लेकिन सर के बाल शायद सर में एक भी सफेद बाल ना मिले। अब तो इमरान को यकीन हो गया कि कलई खुलने में देर ना लगेगी। इसने दानिशमंदी में जो कुछ भी किया था बहुत जल्दी में किया था। भेस बदलते वक्त सिर्फ ये बात जहन में थी कि वो कैदी की हमदर्दियां हासिल करके इससे इसके मुताबिक भी कुछ ना कुछ मालूम कर लेगा, और इसके साथ निकल भागने की तजवीज़ तो इससे गुफ्तगू करते वक्त ही जहन में गूंजी थी। मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि वो इस तरह इन लोगों की किसी न किसी ठिकाने से भी वाकिफ हो जाएगा। अगर ये स्कीम पहले ही जहन में होती तो मेकअप के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाता। बहरहाल अब क्या हो सकता है, अब तो बचाव की कोई सूरत पैदा करनी थी। हो सकता था कि ट्रांसमीटर पर नशर किए जाने वाले पैगाम में भी इसने इसी के मुताबिक किसी को कुछ बताया हो और अपने शुभात का भी इजहार कर दिया हो। फौरी तौर पर कोई तदबीर ना बन पड़ी और तन बतदबीर बस अतूर खराटे लेता रहा। और फिर इसे परवाह कब थी, वो तो बेखतर आग में कूद पड़ने का कायल था और ये बाद में सोचता था कि अब क्या करना चाहिए, और फिलहाल कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि जिस मकसद के हुसूल की ये तगो तदू की थी इसका अभी दौरा तक पता नहीं था। रफ्तन वो उछल पड़ा। गालिबन कान के करीब फायर हुआ था और एक कर्बनाक सी चीख अंधेरे में गूंजी थी। फिर झोपड़े के मकीन की गरज सुनाई दी। खबरदार बूढ़े, तुम अपनी जगह से जम्बिश ना करना, वरना तुम्हारी खोपड़ी में भी सुराख हो जाएगा। इमरान अपने हलक से डरी डरी से आवाजें निकालने लगा। वैसे जेब से रिवॉल्वर भी निकल आया था। अब पूरी बात इसकी समझ में आई, कैदी हलाक कर दिया गया था। गालिबन ट्रांसमीटर पर इसने सिर्फ पैगाम नशर ही नहीं किया था, बल्कि किसी का जवाबी पैगाम वसूल भी किया था, जिसके मुताबिक कैदी को ठिकाने ही लगा दिया गया था और खुद इसका मसला भी शायद ज़ेरे गौर था। 515 यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। नॉवल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा 516 में समाप्त होता है।